ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल ने सरकार की सिफारिश पर 4 अध्यादेश किए जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा किसी दल को फोड़ने या जोड़ने के खेल में वे नहीं हैं। पृथ्वीराज मार्ग अंतर्गत मुगलिंग पोखरा सड़क निर्माण की 74% हुई है प्रगति। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी के कल से 3 दिनों तक होंगे पूर्वारंभ कार्यक्रम। और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ रहे 300 उत्तर कोरियाई सेनाओं के मारे जाने का दक्षिण कोरिया ने किया है दावा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विभिन्न 4 अध्यादेश जारी किए हैं। राष्ट्रपति पोर्टल ने नेपाल के संविधान के तहत सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आयनों का संशोधन करने वाला अध्यादेश 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन अध्यादेश 2081, निजीकरण प्रथम संशोधन अध्यादेश 2081 और आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश अभिवृद्धि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने के लिए बने अध्यादेश 2081 को आज जारी किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि किसी दल को फोड़ने या जोड़ने का काम उनका नहीं है। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लाए जाने को लेकर किए गए दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि विगत में वे अपने प्रधानमंत्री काल में किसी दल के विभाजित होने की स्थिति आने पर संसदीय दल और केंद्रीय कमेटी दोनों में ही 40% सदस्य पहुंचाने की संविधान की व्यवस्था के क्रियान्वयन में जटिलता आने के बाद संसदीय दल या केंद्रीय कमेटी में 40% की व्यवस्था करके अध्यादेश लाया गया था, लेकिन विरोध आने के बाद उसे वापस ले लिया गया था। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि सुशासन की बहाली और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने अध्यादेश लाए हैं। पूछ 26 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संसद के रास्ते लाने में बहुत ज्यादा समय लगता और तत्काल उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता था, इसलिए अध्यादेश लाने पड़े हैं। अध्यादेशों की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष करने के निर्णय के साथ ही मंत्रिपरिषद ने कुछ अन्य निर्णय भी किए, जिनमें विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त करीब 1,63,00,00,000 रूपये की अनुदान सहायता स्वीकार करना और गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारण लागत शामिल हैं। संचार मंत्री गुरुंग ने बताया कि सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विंटल का 3867,38 रूपये निर्धारित किया है। रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी में रूपांतरित हो चुकने के संदर्भ में गहन विमर्श सहित पीएसबी पूर्वारंभ यानी पीएसबी प्री लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल माघ 1 गते से 3 गते तक पूर्वारंभ कार्यक्रम संचालित होंगे। नेपाल टेलीविजन के स्टूडियो हॉल में कल उद्घाटन और पैनल डिस्कशन होगा और माघ 3 गते रेडियो नेपाल के प्रांगण में कार्यक्रम का समापन होगा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने बताया कि कार्यक्रम में पीएसबी के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास, लोकतंत्र के सबलीकरण व राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, आपदा की सूचना और शिक्षा में साझेदारी संबंधी विमर्श होंगे। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत मुगलिन पोखरा सड़क की 74% भौतिक प्रगति हुई है। ये जानकारी पूर्वी खंड के सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी खंड में 27.4 किलोमीटर दूरी में अंतिम चरण की पीचिंग पूरी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस सड़क खंड के 69 किलोमीटर तक दोनों लेन की पीचिंग का काम पूरा हो चुका है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने मरीज प्रेषण राष्ट्रीय निर्देशिका जारी की है। निर्देशिका के मुताबिक किसी स्वास्थ्य संस्था में आने वाले मरीज का इलाज उसी संस्था में संभव न हो सकने की स्थिति में अतिरिक्त इलाज के लिए तुरंत दूसरी संस्था में भेजकर इलाज का उचित प्रबंधन संस्था को करना होगा। इसी तरह स्वास्थ्य संस्था द्वारा अपने तय के मुताबिक दी जा सकने वाली सेवा उपलब्ध होते हुए भी मरीज को अन्य संस्था में न भेजने का प्रावधान भी निर्देशिका में किया गया है। ये जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता प्रकाश पुढ़ाथोकी ने दी। सरकार ने भूकंप और बाढ़ भूस्खलन के बाद पुनर्निर्माण के काम विक्रम संवत 2084 के आषाढ़ तक संपन्न करने के उद्देश्य से पुनर्स्थापना के लिए योजना स्वीकृत की है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने आज सिंहदरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पुनर्निर्माण के लिए न्यूनतम 1 खरब रूपये का प्रारंभिक लागत अनुमान करके योजना को स्वीकृत किया गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि 2079 के टोटी भूकंप में क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण के लिए माघ महीने से लाभग्राहियों का चयन करके किस्त की रकम निकासी की जाएगी। काठमांडू घाटी में पेयजल वितरण के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का परीक्षण पूरा हो गया है। मिलमची उप परियोजना 2 अंतर्गत बिछाई गई कुल 980 किलोमीटर पाइपलाइन का परीक्षण संपन्न हुआ है। ये जानकारी परियोजना क्रियान्वयन निदेशालय के प्रमुख टीका बहादुर चौधरी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। जंग को लेकर यूक्रेन हमेशा आरोप लगाता आया है कि रूस युद्ध लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं परसों यानी 11 जनवरी को यूक्रेनी सैनिकों ने 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को हिरासत में भी लिया था। वहीं अब साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का दावा है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे 300 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही 2700 कोरियाई सैनिक घायल भी हुए हैं। सियोल स्पाई एजेंसी ने आज दावा किया कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने मॉस्को की मदद के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को भेजा है। इसके बदले में रूस कोरिया को सैटेलाइट प्रोग्राम और भारी स्वीकृत हथियारों के लिए रूसी तकनीक की मदद पहुंचाएगा। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि कीव ने 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ा है और उनकी पूछताछ की जा रही है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी जम्फारा स्टेट में नाइजीरिया की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इसमें कम से कम 16 नागरिक मारे गए। स्थानीय निवासियों ने मीडिया को बताया कि इस एयर स्ट्राइक में मारे गए और घायल हुए लोग खुद को हथियारों से लैस गिरोह से बचा रहे थे। दरअसल ये गिरोह फिरौती के लिए लोगों को बंधक बनाता है। ये लोग इन्हीं से खुद को बचा रहे थे। इस दौरान वायुसेना की ओर से एक हवाई हमला हुआ जिसमें अपराधियों के साथ साथ नागरिक समिति के सदस्यों और नागरिकों की भी मौत हो गई। नाइजीरियाई वायुसेना ने कहा है कि निगरानी समिति सदस्यों के मारे जाने के दावों की जांच होगी। नाइजीरियाई वायुसेना द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। इसमें कुछ अपराधियों को मार दिया गया था और कुछ बंधकों को छुड़वा भी लिया गया था। हालांकि इसमें कुछ निगरानी समिति के सदस्यों के मारे जाने की भी सूचना मिली जिसे वो गंभीरता से ले रही है। भारत के प्रयागराज में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस बार कुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल होंगे। कुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा ने आज सुबह बताया कि संगम में अब तक करीब 50 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने सरकार की सिफारिश पर 4 अध्यादेश किए जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा किसी दल को फोड़ने या जोड़ने के खेल में वे नहीं हैं। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत मुगलिंग पोखरा सड़क निर्माण की 74% हुई है प्रगति। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी के कल से 3 दिनों तक होंगे पूर्वारंभ कार्यक्रम और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ रहे 300 उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारे जाने का दक्षिण कोरिया ने किया है दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।